آگے کچھ مزید باتیں غزوہ احد ہی کے ناطے سے. اولما اصابتکم مصیبتم قد اصبتم مثلیہا, کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تھے, تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی, وہ سب اللہ کے حکم سے تھا, اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے. جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ, تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور ساتھ دیتے. اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے بہت قریب تھے. اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی کہا کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو. یہ ہے آیت نمبر 165 سے 168. ان کا عنوان ہے غزوہ احد پر تبصرہ. اس میں تقریباً اسی قسم کی باتیں تھیں کہ جو پیچھے بھی گزر چکی, کہ بعض لوگ شکست سے کچھ سیکھنے کی بجائے نیگیٹو شیئرنگ کرتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ٹیم میچ ہار کے آتی ہے تو پھر اس قسم کے تبصرے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی خوبی بھی سامنے نہیں رکھی جاتی. یہ مقام بڑا خوبصورت ہے اس ناطے سے کہ اگر شکست ہو گئی تو کیا ہوا, اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہمت بندھا رہے ہیں, پھر کیا ہوا؟ آج اگر تمہارے 70 مارے گئے تو کل تم نے ان کے 70 مارنے کے ساتھ قید بھی کیے تھے. تمہارا نقصان تو ان کے نقصان سے پھر بھی چھوٹا ہے. یہ ہوتی ہے پازیٹو اپروچ. بعض لوگ زندگی کے سفر میں پیچھے ہی دیکھتے رہتے ہیں. زندگی کے سفر میں ہمیشہ آگے دیکھیے. زندگی میں کوئی حادثہ گزر گیا, کوئی تکلیف گزر گئی, کوئی غلطی ہو گئی, کوئی لاس ہو گیا, شکست ہو گئی, طلاق ہو گئی, کوئی گھر ٹوٹ گیا, پھر کیا ہوا؟ آگے دیکھو. گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی صرف بیک مرر میں دیکھے تو نتیجہ کیا ہے؟ حادثہ. اسی طرح وہ لوگ جو صرف ماضی کے غم کے اندر گھلے رہتے ہیں, وہ پھر کسی بہت بڑے مزید حادثے سے دوچار ہو سکتے ہیں. اس حصے سے ہم نے جو چیز سیکھی وہ کیا ہے؟ موریل کو بلند کرنا. اچھے لیڈرز یا عام لوگ, ایک اچھی بیوی, ایک اچھی ماں, وہ کبھی بھی نیگیٹو بات نہ کرے. بس آج دیکھیں ہر بندہ یہ بات کرتا دکھتا ہے, بڑے حالات خراب ہیں, آج کل کے نوجوان ایسے ہیں, آج کل کے بچے ایسے ہیں. یقین کریں ایسا نہیں ہے. آج کے بچوں میں جتنی خیر ہے شاید کل کے بوڑھوں میں بھی وہ نہیں تھی. آج اسی دور میں سے آپ دیکھیے گا ابو بکر نکلیں گے, آج کے دور کا عمر نکلے گا, آج کے دور کا عثمان نکلے گا. اور ہر دور کے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حیدر, یہ سارے فرق ہوتے ہیں. صرف ضرورت ہے اس وقت ایک اچھی ماں کی. آج کے دور کے بچوں کا مسئلہ کیا کہ ان کو اچھی ماں نصیب نہیں ہوئی. آج کی ماں کے پاس وقت نہیں ہے. آج کی ماں کو اپنا جسم سجانا زیادہ پیارا لگتا ہے اپنے بچوں کے اخلاق سجانے سے. آج کی ماں کو اپنے قیمتی کپڑے زیادہ عزیز ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی قیمت سے. آج اگر ماں کو شعور آ جائے, وہ اللہ کا کلام پڑھ کے اس سے جڑ کے بچوں کی تربیت ویسے ہی کرے جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بی بی مریم نے کی ہوں گی, انشاءاللہ یہ بچے آپ دیکھیے گا اتنا بڑا چینج لائیں گے کہ انہی سے انشاءاللہ اسلام کا وہ سورج نکلے گا کہ جس کو ویسے تو کہا گیا کہ مغرب سے سورج نکلے گا, ایک وقت آئے گا. آج اسلام کا سورج بھی مغرب سے نکلے گا, اس لیے کہ جہاں برائی ہوتی ہے وہاں سے خیر بھی زیادہ آتی ہے. جب رات گہری ہو جاتی ہے نا تو سورج وہیں سے نکلتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں ایسی مائیں بننے اور ایسی نصیحت کرنے والا بنا دے کہ جو آنے والی نسلوں کو پکڑے. یقین کرے میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ بہت ڈفرینٹ ایج گروپ کو پڑھایا ہے, جوان, بچے, چھوٹے, بڑے, لیکن جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ 10 سے لے کے 14-15 سال کے بیچ کی جو لڑکیاں, اور آف کورس اگر لڑکے, ان کو جو پڑھانے کا مزہ ہے نا, مجھے وہ نہ بڑی لیڈیز میں آتا ہے اور نہ اس سے بڑی لڑکیوں میں آتا ہے. اتنی کچی کچی کومپلیں ہوتی ہیں, یقین کریں کیا مجال اپنی جگہ سے ہل جائیں. اور ان کے سوال, ان کی باتیں, میں حیران ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں کاش اس عمر میں قرآن ہاتھوں میں آئے. میں ان کو بھی کہتی ہوں, میں کہتی ہوں اس عمر میں آپ قرآن پڑھیں تو مجھے رشک آ رہا ہے کہ اس عمر میں اگر قرآن لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو کیا چینج ہو. بڑے تو ایسے لگتا ہے اب زندگی گزار چکے, پتے جھڑنے والے دن ہیں, آخری عمر ہے, مضبوط ٹہنیاں بن گئے, سنیں گے سارا, ہر جگہ جائیں گے, مانیں گے وہی جو دل جائے گا. لیکن یہ معصوم کومپلے ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعی مانتی ہیں. ایک بچہ بڑا پیارا ساتھ ہے میرے پاس, تقریباً ایسے 10-12 سال کا, تو ایک دن میرے سے شیئر کرنے لگا کہ میرا کلاس فیلو جو ہے وہ کوئی چائنیز لڑکا تھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا ہو, تمہارا کیا دین ہے, تو وہ کہنے لگا میرے پاس کوئی دین نہیں ہے. یعنی اس کا کوئی دین نہیں تھا. کہنے لگا میں نے اس کو دین کی باتیں بتائیں, اسلام کی تھوڑی بتائیں. اس کو بہت انٹرسٹ ہوا, اب اس کو مسلمان ہونا تھا. بہرحال بات گھر تک گئی تو کہہ رہا کہ جب میرے گھر والوں کو یا جو اس کے ارد گرد والوں کو پتا چلا تو انہوں نے مجھے آ کے ڈرانا شروع کر دیا, نہیں ایسے نہیں کرو, پھر یہ تمہاری شکایت کر دے گا, دس اینڈ دیٹ. تو کیا میں اس کو اسلام کی بات نہ بتاؤں؟ इतना मुझे दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई। मैंने कहा नहीं पता ये क्या कर रहा है। मैंने फिर उसको प्यार से बताया कि क्या बातें बताने की, क्या नहीं, बेसिक्स पे बात करो, तुम्हें कोई कंट्रोवर्शियल बात की जरूरत नहीं। कह रहा नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं, मैं तो उससे गॉड की बातें करता हूँ, दिस एंड दैट। तो मैं हैरान थी कि वो चीजें जो माओ के मुकद्दर संवारने वाली होती हैं, जिससे माओ की आखिरत बन सकती है, बास माएँ खुद ही बदकिस्मती से अपने बच्चों को वहां से रोक लेती हैं। शऊर की कमी है, तो अल्लाह ताला हमें शऊर वाला बना दे। फिर आगे फरमाया, वला तखसबन अल्लसीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं इनको हरगिज मुर्दा न समझे, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रोजियां दिए जाते हैं, अल्लाह ताला ने अपना फजल जो इनको दे रखा है इससे बहुत खुश हैं और खुशियां मना रहे हैं इन लोगों के बारे में जो अब तक इनसे नहीं मिले, इनके पीछे हैं, इस पर के इन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई वो गमजदा होंगे। वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमत और फजल से, और इससे भी कि अल्लाह ताला ईमान वालों के अजर को बर्बाद नहीं करता। जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के हुक्म को कबूल कर लिया इसके बाद कि इन्हें पूरे जख्म लग चुके थे, इनमें से जिन्होंने नेकी की और परहेजगारी बरती, इनके लिए बहुत ज्यादा अजर है। वो लोग के जब इनसे लोगों ने कहा कि काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले पर लश्कर जमा कर लिए हैं, तुम इनसे खौफ खाओ, तो इस बात ने इन्हें ईमान में और बढ़ा दिया और कहने लगे, हसबुनल्लाहु व नियमल वकील, अल्लाह हमें काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फनकलबू भी नेमत मिनल्लाहि व फ़ज़्ल, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की नेमत और फजल के साथ ये लौटे और इनको कोई बुराई ना पहुंची। उन्होंने अल्लाह ताला की रजामंदी की पैरवी की, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। ये खबर देने वाला सिर्फ शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है, तुम इन काफिरों से ना डरो और मेरा खौफ रखो अगर तुम मोमिन हो। आयत नंबर 169-175, इसका उनवान है बड़े हौसले वाले लोग। वाकई इस हिस्से में अल्लाह ताला ने उन लोगों का तذکرہ किया है कि जिनको देखने के लिए इस वक्त शायद आसमान भी तरसता होगा और ज़मीन भी। ग़ज़वे उहद बहुत ही ज़्यादा नुकसान और ज़हनी दबाव के बाद ख़त्म हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नई जंग का हुक्म हो गया, क्योंकि अबू सुफियान जाते जाते एक धमकी दे गया था कि मैं फिर आऊँगा लड़ने के लिए, तो कहा तुम कहाँ आओगे, हम चलते हैं। और अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक कॉल दी कि लोगों अभी हथियार उठाओ, वापस चलो। और मुसलमान दोबारा अल्लाह के नबी की से एक कॉल पे जमा हो गए। अबू सुफियान को जब पता चला कि अल्लाह के नबी एक लश्कर लेके आ रहे हैं, डर गया। एक शख्स वहां से गुजर रहा था, उसको कुछ रिश्वत दी, कहा जाके सिर्फ एक खबर फैला दो कि अबू सुफियान एक बहुत बड़ा लश्कर लेके आ रहा है। मुराद क्या था कि इनकी हिम्मत तोड़ दी जाए, इनके इरादे तोड़ दिए जाए, लेकिन वो मुजाहिद वाकई सी सब पिलाई हुई दीवारें थी। जब उनको पता चला कि अबू सुफियान बहुत बड़ा लश्कर लेके आया है, तो कहने लगे, हसबुनल्लाह व नियमल वकील, चोट पे चोट खाए हुए। आप देखिए 70 सहाबा को दफनाया तो होगा ना, घर घर में चोट, घर घर में गम, इतनी लाशों को संभाला, इतना नुकसान, और उसके बाद एक नई जंग के लिए तैयार। बस इसको तो इधर से समझ लें कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि चलिए आज एक और पारा कर लेते हैं, यहीं बैठे रहे हम आगे 2 घंटे और बैठेंगे, तो हमारे दिलों में क्या आने लगेगा। और इल्ला माशाल्लाह, मुझे तो नहीं लगता कि आप में से कोई भी उठेगा, लेकिन बात है कहने की कि हम जरा सी नेकी करके थक जाते हैं। हम तो रमजान के बाद ईद के दिन इतना सोते हैं कि नमाजें गुजर जाएं, बहुत नेकियां कर ली। नहीं, अल्लाह को वो लोग मतलूब हैं जो वाकई अल्लाह के दीन के काम को पकड़ ले, और अनथक मेहनत, इसलिए कि बहुत सोना है कब्र में सोएंगे, और बहुत खाना है जन्नतों में खाएंगे। फकुलू वश्रबू हनी अम बीमा तुम फिलैया मिल खालिया, अगर आज अल्लाह के दीन के लिए कुछ भूख प्यास लगती भी है तो लगने दें, कुछ जागना पड़ता है तो जागे, थकन होती है तो थके, वहाँ कोई नसब नहीं होगी, वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आज दुनिया काम करने के लिए मिली है, इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे तो इन्नल्लाहलायुदीअजरलमोमिनीन, अल्लाह मोमिनों का अजर ज़ाया नहीं करेगा। वला यखज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल्कुफ्र, कुफर में आगे बढ़ने वाले लोग तुझे गमनाक ना करें, यकीन मानो कि अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह ताला का इरादा है कि इनके लिए आखरत का कोई हिस्सा अता ना करे, और इनके लिए बड़ा अजाब है। कुफर को ईमान के बदले खरीदने वाले हरगिज अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और इन्हीं के लिए अलमनाक अजाब है। काफिर लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक में बेहतर ना समझें, ये मोहलत तो इसलिए है कि वो गुनाहों में और बढ़ जाएं, इन्हीं के लिए जलील करने वाला अजाब है। जिस हाल पर तुम हो इसी पर अल्लाह ताला ईमान वालों को ना छोड़ देगा, जब तक के पाक और नापाक को अलग ना कर देगा, और ना अल्लाह ताला ऐसा है कि तुम्हें गैब से आगाह कर दे, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसका चाहे इंतखाब कर लेता है। और इसलिए तुम अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, अगर तुम ईमान लाओ और तकवा करो तो तुम्हारे लिए भारी अजर है। ये थी आयत नंबर 176-179, इसका उनवान है अल्लाह ईमान वालों को नहीं छोड़ेगा। अगर आज छुटा हुआ लगता है तो इसकी वजह है कि ईमान उस दर्जे का नहीं है जो मतलूब है। आज भी वो ईमान आ जाएगा, अल्लाह की मदद मुसलमान के साथ होगी और अल्लाह ताला हमें वो ईमान पैदा करने वाला बना दे। आगे चलते हैं। वला यहसबन्न अल्लज़ीन यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरल्लहुम, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल से कुछ दे रखा है वो इसमें कंजूसी को अपने लिए बेहतर ख्याल ना करें बल्कि वो इनके लिए नहायत बदतर है। अन करीब क्यामत वाले दिन ये अपनी कंजूसी की चीज के तौक डाले जाएंगे। आसमानों और जमीन की मीरास अल्लाह ही के लिए है और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला इससे आगाह है। यकीनन अल्लाह ताला ने इन लोगों का कौल भी सुना जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह फकीर है और हम तवंगर हैं, यानी हम दौलतमंद हैं। इनके इस कौल को हम लिख लेंगे और इनका अम्बिया को बिला वजह कत्ल करना भी, और हम इनसे कहेंगे कि जलने वाला अजाब चखो, ये तुम्हारे पेश करदा अमाल का बदला है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करने वाला। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि किसी रसूल को ना माने जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी ना लाए जिसे आग खा जाए। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो रसूल दीगर मौजजों के साथ ये भी लाए जिसे तुम कह रहे हो, फिर तुमने उनको क्यों मार डाला? फिर भी अगर ये लोग आपको झुठलाएं तो आपसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए गए जो रोशन दलीलें सहीफे और मुनव्वर किताब लेकर आए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, हर जान मौत का मजा चखने वाली है और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे पूरे दिए जाओगे। पस जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए बेशक वो कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे की जिंदगी है। ये थी आयत नंबर 180 से 185, 180 से 185। इसका उन्वान है दुनिया के जायकों के बाद मौत का जायका। आज दुनिया में हम कितनी भी लज्जत क्यों ना पालें, कितनी भी खैर, आखिर क्या है? एक तो ऐसी रात आएगी ना जो कब्र में जाएगी, एक तो ऐसा घूंट पीना ही पड़ेगा ना जो दुनिया के सारे घूंट, सारे कोल्ड ड्रिंक्स, सारे मशरूबात का जायका ख़त्म कर देगा। और मौत के दो जायके हैं, एक इतना मीठा इतना लजीज कि उसकी तमन्ना की जा सकती है, और एक इतना कड़वा और इतना तकलीफ देने वाला कि जिससे बचने की दुआएं करनी चाहिए। पहला जायका मोमिन की मौत है और दूसरा जायका काफिर की मौत है। अल्लाह ताला हमें ईमान वाली मौत अता फरमाए। लतुबलवुन्न फ़ी अमवालिकुम व अन्फुसिकुम, यकीनन तुम्हारे मालों और जानों से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, और ये भी यकीन है कि तुम्हें इन लोगों की जो तुमसे पहले किताब दिए गए और मुशरिकों की बहुत सी दुख देने वाली बातें भी सुननी पड़ेंगी, और अगर तुम सब्र कर लो और परहेजगारी अख्तियार करो तो यकीनन ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, और अल्लाह ताला ने जब अहले किताब से ये अहद लिया कि तुम सब लोगों से ज़रूर बयान करोगे और इसे छुपाओगे नहीं, तो फिर भी इन लोगों ने इस अहद को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया और इसे बहुत कम कीमत पर बेच डाला। इनका ये व्यापार बहुत बुरा है। वो लोग अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया इस पर भी इनकी तारीफें की जाएं। आप इन्हें अजाब से छुटकारे में ना समझिए, इनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है आसमान और जमीन की बादशाही और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये है आयत नंबर 186 से 189। इसका उन्वान है ईमान के रास्ते के कांटे। अब देखिए कि इन आयात में ईमान के रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात का जिक्र है। बातें सुननी पड़ती हैं अपनों से भी गैरों से भी, लेकिन वो शख्स जिसकी नज़र मंजिल पे होती है वो रास्ते में आने वाले जख्मों पे फाहे बांध लेता है और चुभने वाले कांटों को हाथों से निकालता जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। इस दुनिया में जो हम भेजे गए ये कैसा ही सफ़र था, कहीं अपनों से बातें कहीं गैरों से बातें। सब्र और तकवा ये दो ऐसे मरहम है जो अल्लाह के रास्ते में आने वाली तमाम तकलीफ़ों के ऊपर इंसान को मरहम बन के लगते हैं, और अल्लाह ताला हमें इसी बात को बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ से आगे सूरत आले इमरान का आखिरी रुकू है, देखेंगे इन आयात को। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वाख्तिलाफ़िल्लैली वन्नहारि लआयातिल उलिल्अल्बाब, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के हेर फेर में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। कौन होते हैं अक्लमंद? अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह का जिक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं। मुराद कह के हर हाल में करते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं और इस गौर व फिक्र का नतीजा क्या निकलता है? कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने ये बेफायदा नहीं बनाया, तू पाक है, बस हमें आग के अजाब से बचा ले। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन्ना रफ़कद अख्ज़ैतहू फ़मा लिल्ज़ालिमीन मिन अंसार। ऐ हमारे पालने वाले, जिसे तू जहन्नुम में डाले, तूने उसे रुसवा किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं। रब्बना इन्नना समेना मुनादी युनादी लिलीमान। ऐ हमारे रब, हमने सुना कि मुनादी करने वाला बावाज़े बुलंद ईमान की तरफ बुला रहा है कि लोगो, अपने रब पर ईमान लाओ। बस हम ईमान लाए। या इलाही, अब तू हमारे गुनाह माफ फरमा और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे और हमारी मौत नेकों के साथ कर दे। रब्बना वातिना मा वअतना अला रुसुलिक। ऐ हमारे पालने वाले माबूद, हमें वो दे जिसका वादा तूने हमसे अपने रसूलों की जुबानी किया, और हमें कियामत के दिन रुसवा न कर, यकीनन तू वादा खिलाफी नहीं करता। ये थी आयत नंबर 190 से 194। इसका उन्वान लिखिएगा, कायनात एक खामोश ऐलान। किस बात का? खिला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ से लेके सूरत के आखिर तक इन आयात के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह पे उठते तहज्जुद के लिए, तो अपने बिस्तर पे बैठे बैठे इन आयात की तिलावत करते और उसके बाद फिर उठ के वजू करके नमाज पढ़ते। तो इन आयात को पढ़ने की आदत तो इंशाल्लाह हमने डालनी है। यहाँ भी ज़रा नोट कीजिएगा कि सुबह उठते ईमान वाले को क्या पैगाम दिया जा रहा है। पहली दावत है तदब्बुर की, फ़ी खल्क़ समावाती वल अर्द। ये वो दावत है जिसने साइंस के इल्म को रिवाज दिया। दूसरी दावत क्या है कि रब्बना मा खलकता हाजा बातिला, इस दुनिया का बामकसद होना। तीसरी दावत क्या है, सुबहानक फकिना अज़ाब अन्नार, अपने आप को आग से बचाने की दावत। और अगला पैगाम क्या है कि इन्नना समेना मुनादी यही युनादी लिल ईमान से लेके आगे तक मांगी हुई दुआएं, यानी ईमान वाले की पुकार पे लब्बैक कहना, ये एक एजेंडा दिया जा रहा है। कुछ लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डायरी बनाते हैं, रात को ही लिख लेते हैं कि अगले दिन हमें क्या काम करने हैं। कुछ लोग सुबह उठ के काम करते हैं। ये एक आफाकी एजेंडा है। पहली दावत दे दी कि कायनात पे गौर करो, दीन और दुनिया के इल्म को अलग ना करो खुदा के लिए, इसलिए कि जब तक साइंस का इल्म मुसलमानों के हाथ में था, ये साइंस खुदा तक पहुंचाती थी। इस साइंस पे तदब्बुर का नतीजा क्या था कि रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला। जब मुसलमानों ने साइंस को पीछे छोड़ा, तो आज क्या हुआ कि दुनिया की रिसर्चेज और तरक्की उन लोगों के हाथ में आ गई कि जो सारी मखलूक को डिस्कवर कर लेते हैं लेकिन खालिक को नहीं पाते। एक शख्स ऐसा गुजरा कि जिसने चंद गैसों को जमा करके एक चांद जैसी चीज बना ली थी कि देखो मैं भी चांद बना सकता हूँ। शुक्र करना चाहिए था कि अल्लाह ने उसको इल्म दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। ये है वो नतीजा जब दीन के इल्म और दुनिया के इल्म को अलग कर दें। ये आयतें मुसलमान से इस बात का दावा करती हैं कि जिंदगी में तदब्बुर की आदत डालो। सूरज चांद सितारों को देखो कि वक्त इलाफुल लैली वन नहार कैसे होता है, कैसे जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में रात दिन बदलते हैं और हमें पता भी नहीं होता, और ये पहिया जो घूम जाता है। कुछ और सबक भी हैं इन्हीं आयतों के अंदर जो चार दिए, इससे अगली आयतों में अब आपको मजीद एक चीज मिलेगी और इंशाल्लाह इन पे आप देखेंगे कि अगर उम्मत मुस्लिमा हर सुबह को ये एजेंडा बना ले तो उनके जिंदगी गुजारने के रोजो शब बिल्कुल फर्क होंगे। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नीला उदीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। बस इनके रब ने इनकी दुआ कबूल फरमाई कि मैं तुम में से किसी काम करने वाले के काम को, ख्वा वो मर्द हो या औरत, मैं हरगिज़ ज़ाया नहीं करता। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो, इसलिए वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए और जिन्हें मेरी राह में ईजा दी गई और जिन्होंने जिहाद किया और शहीद किए गए, मैं जरूर जरूर इनकी बुराइयां इनसे दूर कर दूंगा और बिल यकीन इन्हें इन जन्नतों में ले जाऊंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। यह है सवाब अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन सवाब है। ला यगुर्रन्नक तकल्लुबुल्लज़ीन कफरू फिल बिलाद। तुझे काफिरों का शहर में चलना फिरना फरेब में ना डाल दे। ये तो बहुत ही थोड़ा सा फायदा है, इसके बाद इनका ठिकाना तो जहन्नुम है और वो बहुत बुरी जगह है। लेकिन वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और इनमें हमेशा रहेंगे। ये मेहमानी है अल्लाह की तरफ से और नेक कारों के लिए। जो कुछ अल्लाह के पास है वो तो बहुत बेहतरीन है। यकीनन अहले किताब में से बाज ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया है और जो उनकी जानिब नाजिल हुआ इस पर भी अल्लाह ताला से डरते हैं, और अल्लाह ताला की आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर बेचते भी नहीं। इनका बदला इनके रब के पास है, यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। याय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, तुम साबित कदम रहो और एक दूसरे को थामे रखो और जिहाद के लिए तैयार रहो और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम मुराद को पहुंच जाओ। ये था पैगाम सूरत आले इमरान का। इन आयतों का 195 से 200 इसका उन्वान है ईमान वाली जिंदगी नफ्स को आज़ादी से महरूम कर देती है। असल पैगाम ये है, हमने पीछे जो बातें नोट की थी कि उम्मत को सुबह उठते ही जो पैगाम दिया जाता है, उनमें एक बात ये भी थी कि नॉन मुस्लिम की तरक्की को देखकर ये न सोचो कि वही कामयाब है। आज हम दुनिया में तरक्की करना ये समझते हैं कि जो जितना इस्लाम से दूर हटेगा उतनी ही उसकी तरक्की होगी। असल बात यह है कि ईमान की तरक्की की दलील क्या है कि सेल्फ कंट्रोल। ये जो लफ्ज़ है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सबिरू, सब्र को तो हम समझते हैं, इनफरादी ज़िंदगी के मामलात में होता है, लेकिन साबिरू क्या है? ये मुसाबिरा है, बाब मुफाअल से एक दूसरे के मुकाबले पे सब्र करो, यानी दीन के रास्ते में जब तुम्हें मुश्किल आती हैं, जब लोग तुम्हारे मुसलमान होने की वजह से तुम्हें आजमाए, उस वक्त जमे रहो। और राबितु क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन किस्म के अमल ऐसे हैं कि जिसके करने पे फरिश्ते उसके अजर को लिखने के लिए झगड़ते हैं। अल्लाह के नबी को ख्वाब के जरिए दिखाया गया कि फरिश्ते किसी बात पे झगड़ रहे हैं, तो पूछा कि ये क्यों झगड़ रहे हैं, तो फरमाया कि फरिश्ते उस शख्स का अजर लिखने के लिए झगड़ रहे हैं कि जो वुजू करता है इंदल मकारे, मुश्किल हालात का सब्र। पहली चीज, यानी जब वुजू करना मुश्किल है, मतलब मेकअप किया हुआ है, शादी में बैठे हुए हैं, सर्दी बहुत है, यानी इंदल मकारे, वुजू कब? जब मुश्किल हो। और दूसरा क्या है? चल के मस्जिदों की तरफ जाना, कदम, बाय फुट, मुराद क्या है कि दूर भी है तो जाना पड़ेगा। और तीसरा क्या है? इंतजार उस सलात इबादत सलात, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार। आपने फरमाया जालिकुम और रिबात, जालिकुम और रिबात, जालिकुम और रिबात, ये है रिबात, ये है राबितु। जब उम्मते मुस्लिमा में ये तीन काम आ जाएंगे ना, कि वो वुजू करे हर हाल में, और वुजू कर लिया तो नमाज तो हो ही जाएगी, और जब वो मस्जिद करीब है या दूर उसको मस्जिद में ही जाना है, और जब एक नमाज पढ़ के जान छुड़ा के ना भागे बल्कि इंतजार करे कि कोई दूसरी नमाज पढ़े, उस वक्त उम्मत का मुकद्दर बदलेगा। यहाँ फिर वही बात करूंगी, खालिद यासीन साहब की DVD में मैंने देखा कि उनके पास एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन था, तो एक पर्ची आई कि ये बताएं कि मुसलमानों के हालात कब बदलेंगे। तो उन्होंने वो पर्ची दिखाई इस तरह से जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, कहने लगे ये क्वेश्चन किसने भेजा है, तो मैं उसको इसका जवाब कल सुबह मस्जिद में फजर की नमाज के बाद दूंगा। ये था जवाब कि जब उम्मत का एक एक फर्द मस्जिद की नमाज का आदी होगा ना, फिर उम्मत बनेगी। देखिए, घर में तो आप नमाज पढ़ लेंगे, अकेले पढ़ें, चले जमात भी कर लें, आपके घर का तो एक माहौल बन गया, लेकिन आपको अपने साथ रहने वालों का कब पता चलेगा? तो अल्लाह की मदद उस उम्मत पे आती है जिसको इज्तमाईयत मिलती है। पूरी सूरत आले इमरान का अगर एक लफ्ज में आप खुलासा करें, इज्तमाईयत। और अल्लाह ताला हमारा मिजाज इज्तमाई बना दे।